वही स्थान वृंदावन। लेकिन वृंदावन में जाने के बाद भी अगर हमने कृष्ण कथा नहीं किया, कृष्ण की सेवा नहीं की, तो वृंदावन में रहते हुए हम बेलगाम में। लेकिन बेलगाम में हो, जंगल में हो, अगर हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो वही स्थान वृंदावन है। ये स्थान बहुत रम्य है। तो आज गाएंगे वासंती रस। वैसे भी ये अभी वसंत ऋतु चल रहा है ना, वसंत ऋतु है ना अभी, तो वासंती रस अच्छा है। वासंती रास, भगवान श्री कृष्ण ने रास
ओमानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
हरे कृष्ण। सबका पेट भरा हुआ है? ज्यादा भी भरा हुआ होना नहीं चाहिए। तो आज हम यहां सब एकत्र हुए हैं आप सबको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आप सबने जगन्नाथ रथ यात्रा के समय इतने हृदय से प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सेवा की, और आप सबके प्रेम के परिश्रम की वजह से जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव इतना सुंदर हो सका। कितने हजारों हजारों लोगों, हजारों हजारों की संख्या में लोग आए, इन्होंने भगवान के दर्शन किए, कीर्तन में भाग लिया, प्रवचन का लाभ लिया, वैष्णवों का दर्शन किया, और इसलिए ये जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव में जो भी प्रचार हुआ है, जो भी अन्यों को आध्यात्मिक स्वीकृति मिली है, जो आध्यात्मिक लाभ मिला है, उसमें आप सब भागीदार हैं, उसका हिस्सा आप सबको भी मिलेगा। और जितना ज्यादा किसी भक्त ने यहां सेवा किया हो, उतना ज्यादा वो भागीदार है। आध्यात्मिक जीवन ये बड़ा चमत्कार का जीवन है। जितना हम देते हैं उतना हमको मिलता है। भौतिक दृष्टि से हम जब किसी चीज को देते हैं तो हमसे, हमारे पास नहीं रहता, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। जितना हम देंगे उतना ज्यादा हमारे पास रह जाता है। तो कभी भी जो भक्ति करता है उसका नुकसान नहीं होता, परिश्रम का फल कभी नहीं होता, परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भौतिक सृष्टि में हम देखते हैं, अगर कोई व्यापार करने का इच्छुक है, बहुत व्यापार करता है, बहुत परिश्रम करता है, दिन रात मेहनत करता है, अंत में नुकसान हो जाता है, उसको वो व्यापार बंद करना पड़ता है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार से, इतना कष्ट से, इतनी तपस्या से उसको बड़ा करते हैं, बड़ा होकर बच्चा बदमाश हो जाता है, माता पिता को ही घर से बाहर निकाल देता है, तो निष्फल हो गया उनका सेवा। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, फिर कभी कभी परीक्षा में फेल हो जाता है, निष्फल हो गया उसकी पढ़ाई। ऐसे भौतिक क्षेत्र में हम देखेंगे तो जगह जगह परिश्रम निष्फल भी हो सकता है। जब तक कि फल हाथ में नहीं मिले, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा परिश्रम सफल हुआ। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी कार्य की सफलता फल के दृष्टिकोण से की जाती है। अच्छे मार्क मिले परीक्षा में, सफल हो गए, कम मार्क मिले, फेल हो गए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जीवन में हम फल के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम प्रयास के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये प्रयास प्रेम से किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, इसलिए ये प्रयास सफल है। इसको बोलते हैं सेवा। ये सेवा शब्द का अर्थ क्या है कोई बता सकते हैं? सेवा मतलब क्या है? सेवा क्या चीज होती है कोई बताएंगे? सेवा क्या, सेवा मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना सेवा करना, सेवा करना, चलो सब्जी काटने की सेवा करने आ जाइए, सब यहाँ सेवा कीजिए। फल की अपेक्षा नहीं, ठीक है। और कोई? भगवान के संतुष्टि के लिए काम करना, ठीक है। भगवान की संतुष्टि के लिए भी अगर कार्य करें लेकिन गुस्से से करें, ठीक है, भगवान प्रसन्न होते हैं ना, चलो कर डालो ना। तो की अप्रतिहता, ठीक है। हाँ, ये शब्द हम ढूंढ रहे थे। जो कार्य प्रेम से किया जाता है उसको सेवा बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द है, प्रेम, नहीं तो उसको सेवा नहीं कहते। तो जो वस्तु प्रेम से किया जाता है वो सेवा हो जाता है, नहीं तो वो केवल एक काम हो जाता है, कार्य हो जाता है। माँ छोटे बच्चे का देखभाल करती है वो सेवा कहलाता है, क्यों? उसमें प्रेम होता है, हालांकि वो भौतिक प्रेम है फिर भी। तो वही प्रेम करने की भावना, वही प्रेम से कार्य करने की भावना अगर भगवान में हम केंद्रित करें तो इसको सेवा कहते हैं, भक्ति कहते हैं। भक्ति और सेवा में कोई अंतर नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं अरे आप लोग तो केवल भक्ति करते हो, आप लोग केवल बैठ के पेड़ के नीचे आराम से बैठते हो, कुछ काम करना चाहिए, कुछ कार्य करना चाहिए। लेकिन वो नहीं जानते कि भक्ति का मतलब है सेवा करना, कार्य करना। हाँ, श्रवण कीर्तन इनमें से बहुत महत्वपूर्ण है और सेवा का सार है अवश्य। अगर हम अच्छी तरह से सेवा करेंगे, प्रेममयी सेवा करेंगे भगवान की, तो श्रवण कीर्तन में हमारी रुचि बढ़ जाएगी। परंतु हम जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम भावना से करते हैं उसको सेवा कहते हैं। चाहे कोई भक्त मंदिर का मार्जन कर रहा हो, रसोई कर रहा हो, बाहर प्रचार कर रहा हो, पुस्तक वितरण कर रहा हो, जो भी कुछ हम प्रेम से करते हैं उसको सेवा कहते हैं। तो वही कार्य अगर प्रेम से नहीं किया जाए तो उसको सेवा नहीं कहते। जैसे सोचिए कि आप मंदिर में जाते हैं और भगवान के सुंदर मूर्ति का दर्शन करते हैं, भक्ति भाव से प्रेम से दर्शन करते हैं, तो वो सेवा हुआ कि नहीं हुआ? आप ऐसे कितने भक्त मानते हैं कि ये सेवा हो गया? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्त मानते हैं कि सेवा नहीं हुआ? ये एक ही भक्त है सेवा। क्यों नहीं हुआ सेवा? हाँ, कर्तव्य है, परंतु अगर ये सेवा शब्द की परिभाषा के दृष्टिकोण से हम देखें, सेवा मतलब प्रेम से भगवान के लिए कोई कार्य करना। तो अगर कोई भक्त प्रेम से भगवान का दर्शन कर रहा है तो क्या वो सेवा नहीं है? वो भी सेवा है। लेकिन इसमें और एक बात है, केवल इसमें हमारे आनंद की बात नहीं होनी चाहिए। हम भगवान के सामने खड़े हैं, प्रेम से ही हम दर्शन कर रहे हैं, हमारे हृदय में प्रेम है, लेकिन उधर मंदिर में आग लग रही है या कोई पर्दा जल गया है या कोई अर्जेंट बहुत इमरजेंसी सेवा है जो इसी क्षण करना चाहिए, हम बोलते नहीं हम प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए भी वो कार्य होना चाहिए। अपनी प्रेम भावना तो होनी चाहिए, साथ साथ भगवान की प्रसन्नता भी उसमें होनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता का मतलब है कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के प्रचार के लिए जो भी अनुकूल है वो हमको करना चाहिए उस समय। अगर उस समय कोई अचानक आवश्यक कोई सेवा पड़े तो हम प्रेममयी दर्शन करके छोड़ के भी उस समय हम जा सकते हैं। जैसे माता यशोदा जब श्री कृष्ण को स्तनपान करा रही थी और उन्होंने दूध चूल्हे के ऊपर रखा था, दूध उबल गया, दूध बाहर गिरने लगा, और उस समय माता यशोदा ने ये नहीं कहा कि कृष्ण मेरे पास है, मुझे सेवा करनी चाहिए। माता यशोदा प्रेममयी सेवा कर रही थी श्री कृष्ण की, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि दूध ऊपर आ रहा है, क्या किया उन्होंने, कृष्ण को तुरंत नीचे रख दिया। कृष्ण रोने लग गए। अरे भगवान को रुलाना क्या है, भक्ति है? भगवान को प्रसन्न करना, जब हम बोलते हैं कि किसी की सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, तो प्रसन्न करने का मतलब है उनका चेहरा हंसमुख होना चाहिए ना। मैं कैसे जान सकता हूं कि आप प्रसन्न हैं या नहीं? अगर मैं आपकी कोई सेवा करता हूं, अगर आपका चेहरा एकदम छोटा हो जाए, गंभीर हो जाए, लाल लाल आंखें हो जाए, तो मैं समझूंगा मैंने आपको प्रसन्न नहीं किया। लेकिन आपका चेहरा एकदम हंसमुख हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरे सेवा से आप प्रसन्न हुए हैं। तो अगर हंसमुख रहना यह प्रसन्नता का चिन्ह है, लक्षण है, तो माता यशोदा ने कृष्ण को तो बहुत नाराज किया, प्रसन्न नहीं किया, कृष्ण तो रोने लग गए। फिर भी माता यशोदा ने सोचा नहीं, सीधे अंदर गई, दूध चूल्हे से उतार दिया, क्योंकि वही दूध जो है वो कृष्ण के लिए ही था। उस समय माता यशोदा को नापतोल करना था कि इस समय कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल क्या है, अच्छा क्या है, और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया। तो उसी प्रकार हमें भी भक्ति जीवन में निर्णय लेना पड़ता है, जैसे कि पारिवारिक जीवन में भी निर्णय लेना पड़ता है। एक बच्चा ये बोल रहा है, अब एक बच्चे के लिए दो तीन सेवाएं एक साथ हो सकती है, तो कभी कभी माता को या पिता को निर्णय लेना पड़ता है कि बच्चे के लिए अब ये सेवा करना है कि वो सेवा करना है। क्योंकि भावना प्रेम की है तो जो भी उसके बाद में कार्य होता है वो प्रेम का कार्य ही होता है, इसलिए वो सेवा हो जाता है। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति भाव से जब हम कोई कार्य करते हैं तो ये है सेवा। तो ये दो चीजें, तीन चीजें हैं। पहली बात भगवान की प्रसन्नता, दूसरी बात हमारी प्रेम भावना, तीसरी बात क्रियाशील होना, कार्य करना। ऐसे नहीं कि हम एक जगह बैठे रहे, हम भगवान की बहुत प्रेममय सेवा करते हैं और ऐसे बैठे गए एक जगह पर, नहीं। अगर भगवान की सेवा के लिए क्रियाशील होकर हमें भागदौड़ करना पड़े तो वही सही। तो आप सबने इसी तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा में सेवा की, भगवान कृष्ण की सेवा में बहुत आनंद है, परंतु भक्त को यह आनंद से भी आसक्ति नहीं है। अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए या अगर भगवान की सेवा के लिए अगर भक्ति के आनंद को भी हमको त्यागना पड़े तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। और ये आप सब में भी दिखाया, आपको कीर्तन का आनंद लेना था पंडाल में जाकर, किसी को दर्शन का आनंद लेना था, लेकिन उस आनंद को आपने त्यागा। क्यों? क्योंकि दूसरी जरूरी सेवा थी कहीं पर, किसी को गाड़ी पार्किंग के स्थान में उधर पीछे रहना था जहां कोई भक्त नहीं, अकेले अकेले वहां खड़े घंटों तक, रात के 12 बजे 1 बजे तक, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। आप में से कई भक्त जूते के स्टैंड पर रहे, आप में से कई किचन में कुकिंग करते हुए रहे, ऐसे आप सब ने कोई ना कोई ऐसी सेवा की जिससे आपने अपने आनंद को त्यागा। हालांकि आपको आनंद मिल रहा था उस कार्य में, भक्ति में, लेकिन उस आनंद को त्याग कर आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई अन्य सेवा स्वीकार किया जिसमें कि शायद बाहरी रूप से इतना आनंद न आया हो, परंतु जो जरूरी था। माता यशोदा को कृष्ण का स्तनपान कराती वो ज्यादा आनंद आ रहा था, उठ के दूध को चूल्हे से उतारने में इतना आनंद नहीं था, लेकिन उनको मालूम था कि ये जरूरी है इस टाइम, इसलिए उन्होंने किया। तो भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि भक्ति के सिद्धांत कितने अच्छी तरह से उतर आते हैं। तो आप सबके सुंदर उदाहरण से बेलगाम के लाखों लाखों लोग लाभान्वित हुए, उनको भक्ति का फल मिल सका आपकी तपस्या की वजह से। कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम एक छोटे से भक्त हैं, हमारी सेवा से क्या है, हमको कोई अच्छा कीर्तन करना नहीं आता, हमको कोई बड़ा प्रवचन देना नहीं आता है, हमको कोई श्लोक नहीं आते, कुछ भी योग्यता हमारे अंदर नहीं है। नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। भक्ति शारीरिक, मानसिक या बुद्धि की योग्यता के ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति यह आध्यात्मिक है, यह आत्मा के ऊपर निर्भर है, इसलिए भावना है, कृष्ण भावनामृत। आदमी कितना भी भौतिक दृष्टि से योग्य हो या अयोग्य हो, उसकी भावना अगर अनुकूल है, सही है, तो वो भक्ति में प्रगति करके शुद्ध भक्त बन के गोलोक वृंदावन जा सकता है। लेकिन अगर कोई भौतिक दृष्टि से योग्य होते हुए उसकी भावना उतनी ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, प्रेम से भरी हुई नहीं है, तो उसको बहुत समय लगेगा भगवान के धाम में जाने के लिए। इसलिए कभी भी अपने आप को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, न भक्ति को, न भगवान को, न भक्त को। ये सब आध्यात्मिक है, भावना, हमारी भावना ही सब कुछ है। इसलिए इस भावना को बढ़ाने के लिए हमें जो अनुकूल है वो करना चाहिए। ऐसे भक्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए जिनकी भावना अच्छी है, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारी भक्ति की भावना बढ़े। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन शीलानुकृष्णम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। रूप गोस्वामी बताते हैं कि अनुकूल दृष्टि से जो भगवान की सेवा की जाती है उसको उत्तम भक्ति कहते हैं, जिस सेवा में, जिस प्रेम में कोई भौतिक मिश्रण नहीं होता। तो भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को आनंद देना, ये हमारा कर्तव्य है। वो कहानी आप जानते हैं ना, जब श्री कृष्ण को सरदर्द हुआ और नारद मुनि वहां पर पहुंचे और नारद मुनि ने पूछा कि अरे प्रभु, आपके लिए क्या किया जाए, हम कविराज को बुलाएं, कोई वैद्य को बुलाएं? तो कृष्ण ने कहा, ना ये वैद्यों की बात नहीं है, ये मेरा सरदर्द निकाल नहीं सकेंगे, मैंने बहुत कुछ देखा है, इसके लिए एक ही उपाय है, इलाज है। वो क्या है? वो मेरे भक्तों की पद रेणु, पद की धूली, चरणों की धूली। तो नारद मुनि सोचने लगे, कौन देगा ऐसे चरण की धूली? फिर वो वन में गए, मधुवन में, बहुत ऋषि मुनि वहां पर थे, उनसे पूछा कि आपके चरण की धूली देंगे? कृष्ण को सरदर्द हो गया है, आपके चरण की धूली उनके सर के अभिषेक करने से उनका सरदर्द दूर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, अरे नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, हमारे चरण की धूली कृष्ण के सर के ऊपर? अरे अरे, हम ये बात बोलने से भी हमारा पाप हो जाएगा, और अगर हम वास्तव में ऐसा करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, हमेशा नरक में ही रहेंगे। फिर नारद मुनि आगे गए वृंदावन में, वहां गोपियां थी। अरे नारद मुनि क्या बात है, आप तो हमेशा हसमुख रहते हैं, आज चिंतित क्यों है आप? क्योंकि श्री कृष्ण को सरदर्द हुआ है। अच्छा, तो क्या उपाय है? वो कृष्ण बोल रहे हैं कि इसके लिए उपाय है कि उनके भक्तों की चरण की धूली अगर मिले उनके सर के ऊपर तो उनका सरदर्द ठीक हो जाए। अच्छा, ये बात है, तो ले लो हमारे चरण की धूली, भर भर के जितना चाहिए बाल्टी में ले जाओ। तो क्या तुम्हें, आपको मालूम नहीं कि आपको नरक में जाना पड़ेगा? कोई बात नहीं, अगर हमारे हमेशा नरक में निवास करने से श्री कृष्ण को सरदर्द से मुक्ति मिल जाए तो बस इसी में हमारी खुशी है। ये है भावना, अपने सुविधा को न देखते हुए, अपने पसंद नापसंद को न देखते हुए, अपने आनंद को न देखते हुए, केवल भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, भगवान की सेवा कैसे बढ़ाया जाए, ये कार्य भक्ति है, उत्तम भक्ति। और इस भावना का अनुशीलन करने के लिए हमें प्रभुपाद जी ने ये संधि दी है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस कौन संस्था इसलिए प्रभुपाद ने बनाई है, ताकि इस भावना को, जो सेवा करने की भावना हमारे अंदर है, जिस भावना को हम इधर उधर भौतिक चीजों में, भौतिक व्यक्तियों में केंद्रित करते आए हैं इतने करोड़ों जन्मों से, उस भावना को सही दिशा में, सही केंद्र बिंदु में लगाना कृष्ण, इसके लिए प्रभुपाद ने ये इस्कॉन संस्था बनाई। बाहर की दुनिया में लोगों को भक्ति में रुचि नहीं है, उनको अन्य चीजों में बहुत रुचि है, अपने शरीर में, अपने शरीर को सजाने में, उसका भोग, उसको भोग देने में, धन संपत्ति एकत्र करने में, अपने कुटुंब परिवार मित्रों के संग में उनको आनंद आता है, लेकिन भगवान में बहुत कम लोगों को रुचि है। लेकिन हर एक मनुष्य को चाहिए कि वो गहराई से सोचे कि ये जीवन क्या है, ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, हम क्या क्या ले आते हैं जीवन में, क्या ले जाते हैं, इसको गहराई से सोचकर फिर हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। इस संदर्भ में एक कहानी आपको बताएंगे। एक बार एक राजा था, राजा की चार रानियां थीं। राजा अपने चौथे रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, सबसे ज्यादा बहुत लाड़ प्यार करता था। उस चौथे रानी को अच्छे से अच्छे कीमती से कीमती वस्त्र आभूषण गहने देता था, खाने के लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन देता था, हर समय उस चौथे रानी के लिए आदेश के पालन करने के लिए हाजिर होता था। प्राय उस चौथे रानी का गुलाम बन गया ये राजा। इस तरह से समय बीतता गया। राजा की तीसरी रानी, उससे भी राजा बहुत प्रेम करता था और ये भी बहुत सुंदर थी। ये तीसरी रानी इतनी सुंदर थी कि राजा जब कहीं दूसरे पड़ोस के राज्यों में जाते या दूसरे राजा लोग वगैरह आते तो उनको दिखाने के लिए अपनी तीसरी पत्नी को, तीसरी रानी को सामने लाते थे, दिखाने के लिए देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है। लेकिन ये होते हुए भी उस राजा को इस तीसरे पत्नी के बारे में एक भय था। वो भय था कि किसी भी समय ये मेरे को छोड़ के जा सकती है। तीसरा भय, तीसरी रानी का भय था। प्रेम तो था बहुत। दूसरी पत्नी, दूसरी रानी, दूसरी रानी से भी राजा प्रेम करता था और ये दूसरी रानी के गुण भी अच्छे थे। जब भी राजा को कठिनाई होती थी तो राजा को सांत्वना देने आते थे, जब भी राजा कोई विकट परिस्थिति में होते तो वो अच्छी सलाह देने के लिए आते। तो ये रानी जो है ये राजा की शुभचिंतक थी, हर समय अगर राजा को जरूरत पड़े कोई सलाह की या कुछ भी, हमेशा वहां रहती थी, बहुत धैर्य से हमेशा राजा की सेवा में आतुर रहती थी। और पहली रानी थी जिसके गुण बहुत अच्छे थे और उसकी वजह से ही राजा अपने राज्य और धन संपत्ति को बनाए रख पाए। वो बहुत ही विश्वास से, श्रद्धा से राजा की सेवा में लगे रहती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि राजा ने बिल्कुल इस पहले रानी की ओर ध्यान नहीं दिया। प्राय ऐसा मानो कि रानी है ही नहीं, ऐसे राजा व्यवहार करते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि राजा बूढ़ा हो गया, बहुत बीमार हो गया। अचानक ऐसे खतरनाक बीमारी आ गई कि वैद्यों ने सारा हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, कह दिया कि राजा अभी कोई उपाय नहीं है, अभी आपका अंत जो है बहुत करीब है। तो राजा को बहुत दुख हो गया, अरे रे 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 रे, अभी मेरा अंत आ गया नजदीक, अभी क्या करूं। तो कौन है मेरे पास, केवल मेरे चार रानियां हैं, चलो मेरे रानियों के पास तो जाऊं। तो चौथे रानी के पास गए और कहने लगे, हे महारानी देखो तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हारे ऊपर कितना प्रेम दिया है, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है मैंने, जमीन आसमान एक कर दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाए, अच्छे अच्छे गहने लाए, अच्छे अच्छे खाने के लिए पदार्थ दिए, सब कुछ तुम्हारे लिए किया। अब मुझे यहां से जाना होगा, वैद्य लोग बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु नजदीक है, तो ऐसे समय मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो,
क्या तुम मेरे साथ में आओगी? तो चौथी रानी ने बोला, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां से उठ के तुरंत चली गई, कमरे से बाहर ही निकल गई फट करके। अरे तो ये इतना ऐसा ऐसे शब्द बोलने से वो राजा के हृदय में वो छुरी जैसे तीर जैसे लग गए, चुप गए। राजा तो बैठ ही गए उधर सोचने लगे, जीवन भर इस रानी के लिए मैंने इतना कुछ किया और आज ये एक शब्द में मुझे फटकार रही है, बोल रही है नहीं मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, आपके साथ। ठीक है क्या किया जाए, ठीक है चौथी रानी तो नहीं आई, तीसरी के पास तो जाए। तो तीसरी रानी के पास गए, तीसरी रानी से पूछा, देखो तुम जानती हो मैंने कितना प्रेम किया है तुम पे, जगह जगह इतना गर्व से मैं तुमको दिखाया करता था कि देखो देखो ये मेरी तीसरी रानी है, और अब मुझे जाने का समय हो गया, मृत्यु का समय नजदीक आ गया, तुम मेरे साथ आओगी? तो तीसरी रानी ने उत्तर दिया, जीवन तो जीने के लिए कितना अच्छा है, सुंदर है, मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ, मैं हरगिज नहीं आऊंगी, उल्टा आपके मृत्यु के बाद मैं दूसरी बार शादी कर लूंगी। तो राजा को बेचारे पहले से छुरी घुस गई थी हृदय में, अब उसके ऊपर और एक अस्त्र आ गया, राजा और नीचे बैठ गए हाय हाय करते, अरे क्या हो गया। तो सोचे चलो दूसरी रानी तो है, तो दूसरी रानी के पास गए, दूसरी रानी से बोलने लगे कि देखो पहले दूसरे जो चौथी तीसरी रानी है इन्होंने तो मुझे, उन्होंने अपना असली रंग तो दिखा दिया, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ में थी, जब भी मुझे जरूरत होता था आप तुम मेरे साथ में रहती थी, मैं ही तुमसे अच्छे अच्छे सलाह लेता था, कष्ट के समय में तुम मेरे साथ हमेशा रहती थी, तो इस समय मेरा कष्ट का समय है, मृत्यु आ गया है मेरे लिए, मुझे जाना होगा, तुम मेरे साथ आओगी? तो तीसरी रानी ने जवाब दिया, दूसरी रानी ने जवाब दिया कि हे राजन, आज तक मैं आपका साथ देते आई लेकिन इस बार मैं नहीं आऊंगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके स्मशान तक आऊंगी मैं आपके साथ। अरे और बेचारे राजा को धक्का बैठ गया, देखो एक से बाद एक के बाद एक रानी मेरी क्या बोल रही है। और निराश होकर हताश होकर जब राजा बैठा था, अचानक ऊपर से आवाज आई, हे राजन चिंता नहीं करो मैं आपके साथ आऊंगी, मैंने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा, हालांकि आपने मेरी ओर देखा नहीं लेकिन मैं आपको कभी भूली नहीं, मैं आपके साथ आऊंगी। और जब राजा ने ऊपर देखा तो अपने पहले पत्नी को देखा, पहले रानी, और पहले रानी बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी क्योंकि उसको आहार भी नहीं था कुछ, बहुत दिनों से खाए नहीं, राजा ने कोई ध्यान ही नहीं दिया था, तो इसलिए पत्नी बहुत दुबली पतली हो गई थी। तो राजा ने फिर, राजा को बहुत दुख लगा उस समय, ये एक पत्नी जो है मेरी, जो मेरे साथ देने के लिए तैयार है, उसका मैंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया था, तो जिसका ख्याल करना चाहिए था उसका मैंने ख्याल नहीं किया, और जिन चीजों को ख्याल देना इतना जरूरी नहीं था जरूरत से ज्यादा मैंने ख्याल किया। तो हाय 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 करके राजा दुखी बैठ गया, अपनी मौत की प्रतीक्षा करता रहा। तो इस कहानी में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, राजा आत्मा का प्रतीक है, राजा मतलब आत्मा, और ये चार रानियां कौन है, चौथी रानी कौन है, शरीर, हमारा शरीर। जैसे राजा चौथे रानी के ऊपर बहुत लाड़ प्यार करता था ना, दिन रात उस चौथे रानी के पीछे, अच्छे कपड़े देना, ये देना, अच्छे खाने के लिए वस्तु देना, उसी प्रकार से हमारा सारा लाड़ प्यार हम हमारे इस कमबख्त शरीर के ऊपर हम करते हैं। कितना हमको ये कष्ट देता है शरीर, लेकिन फिर भी लाड़ प्यार देते हैं, शरीर को जो चाहिए वो देते हैं, शरीर के सुख के लिए क्या नहीं करते हैं, शरीर को दुख को मिटाने के लिए क्या नहीं करते हैं। तो शरीर का इतना सब देखभाल करते हुए भी जब मृत्यु आ जाता है तो तुरंत शरीर बोलता है टाटा बाय बाय, निकल जाता है। जैसे चौथी रानी ने बोला, जैसे ही राजा ने बोला चौथी रानी से आओगी मेरे साथ, उन्होंने कहा नहीं और निकल गई वहां से। उसी तरह से मृत्यु का समय जब आता है तो शरीर आत्मा को तुरंत छोड़ के चला जाता है, आगे पीछे नहीं देखता है कि इतने साल मेरे में ये आत्मा रही और थोड़ा साथ देना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते, तुरंत अलग हो जाता है। तो यह चौथी पत्नी। तीसरी पत्नी, ये कौन है? हमारे धन संपत्ति प्रतिष्ठा। तीसरे रानी के पास जब राजा गया था तो रानी ने क्या कहा? मैं नहीं आऊंगी, उल्टा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी? दूसरे से शादी कर लूंगी। मतलब क्या है? हमने इतना परिश्रम करके धन कमाया, संपत्ति कमाई, प्रतिष्ठा कमाई समाज में, किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए, है कि नहीं? जैसे तीसरे रानी को दूसरों को दिखाना चाहते थे ना राजा, सब जगह जाकर राजा को देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। उसी तरह से हम धन संपत्ति कमाते हैं केवल दूसरों को दिखाने के लिए। आदमी को कितना चाहिए? आदमी को एक कमरा हो जाए उतना काफी है, दो रोटी मिले दिन में काफी है। लेकिन आदमी को बड़ा बड़ा सब कुछ चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा बंगला, गाड़ी, ये वो। क्यों? क्योंकि दूसरे पड़ोसी के पास है और किसी को दिखाना है कि देखो हमने कितनी प्रगति कर ली है दुनिया में। दूसरों को दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा हम एकत्र करते हैं, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जब दिखाने के लिए इतना सब एकत्र करते हैं, जब मृत्यु आ जाती है तो हमारा धन, हमारी संपत्ति दूसरे के पास जाती है। हम उसको बस साथ में नहीं ले जा सकते, हमारे बेटे के पास, बच्चों के पास, पत्नी के पास, पति के पास, जो भी है, जहां भी जाए, लेकिन हमारे पास नहीं रहेगा, दूसरों के पास जाएगा, दूसरों से विवाह कर लेगा। तीसरी पत्नी, दूसरी पत्नी मतलब कौन? हाँ, बहुत अच्छा, हमारे कुटुंब, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी। जब हमारी कठिनाई होती है तो दौड़ के हमारे पास आते हैं सलाह देने के लिए। अरे तुम कृष्ण भक्ति में जा रहे हो? छी छी छी, चलो 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 निकलो इसमें, अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा काम करो। ये उम्र में नहीं करना है, आगे चल के करो। और करना भी है तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। सुबह एक बार नमस्कार करो काफी है, ये क्या दिन रात बैठ के माला लेके बैठते। तो ये सब सलाह देने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। कुछ भी कठिनाई होती है तो हम उनके पास जा सकते हैं, हमारे भाई, हमारे चाचा, मामा। लेकिन ये भी मृत्यु के समय कहां तक हमारे साथ आ सकते हैं? स्मशान तक ही आ सकते हैं। जैसे वो दूसरी रानी ने कहा कि राजन मैं आपके साथ नहीं आ सकती, केवल मृत्यु के बाद स्मशान भूमि तक आऊंगी आपके पास। तो उसी तरह से हमारे जो सगे संबंधी हैं वो केवल स्मशान तक हमारा साथ दे सकते हैं, उसके आगे नहीं आ सकते। जितने भी हमारे प्रिय कुछ क्यों ना हो, हमारे कुटुंब के सदस्य जिन्होंने हमको बड़ा किया है, जिनको हमने बड़ा किया है, वो भी सब केवल स्मशान भूमि तक हमारे साथ में रहेंगे, फिर निकल जाएंगे। चौथी रानी जिसने कि साथ दिया राजा का और कहा कि मैं हूं तुम्हारे साथ, वो कौन है? परमात्मा। हाँ ठीक है, परंतु धर्म, हमारी धार्मिकता। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म हमारे धर्म को हम साथ में ले जा पाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं ना, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वो कहते हैं कि इस भागवत धर्म के पथ में हम अगर थोड़ा भी कुछ प्राप्त करते हैं तो वो हमें सबसे बड़े भय से सुरक्षित रख सकता है। सबसे बड़ा भय क्या है? कि हम किसी नीच योनि में जन्म लें, हमारे भक्ति को भूल जाएं, तो इससे सुरक्षा हमें मिल जाती है थोड़ा भी कुछ करने से। तो जो भी हमने कुछ धर्म किया है, ये भागवत धर्म, भगवान की सेवा की है इस जन्म में, वो हमारा साथ रहेगा, हमारे साथ में रहेगा, और अगले जन्म में आगे से हम यहां ये चालू कर पाएंगे। भौतिक दृष्टि से ऐसा, भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। हमने 1,00,000 रुपए कमाए, मृत्यु के समय हमारे हाथ में मुट्ठी में 1,00,000 रुपए पकड़ के हम मर गए और हम सोचेंगे कि अगले बार माँ के पेट से आते बाहर आते आते 1,00,000 रुपए हाथ में लेकर आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हाथ में क्या लेकर आएंगे हम? माँ के अपने मुट्ठी में, माँ के गर्भ से जब जन्म लेंगे, मुट्ठी में क्या साथ में लेकर आएंगे? पाप, पाप के फल। वो 1,00,000 रुपए कमाने के लिए जो हमने पाप किए थे ना, वो साथ में बच जाएंगे, वो पैसा रह जाएगा, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए जो हमने पाप किए थे वो पाप साथ में लेकर आएंगे मुट्ठी में। तो चाहे अगर हमने पाप किए हो तो पाप हमारे साथ में चले आएंगे, अगर हमने भगवान की भक्ति की हो तो भगवान की भक्ति हमारे साथ चली आएगी। तो चयन हमको करना है, हमारे हाथ में है कि हमारे साथ में क्या ले जाना है हमको। वैसे ले तो जाएंगे केवल एक ही चीज, या तो पाप या धर्म, अन्य चीज हम नहीं ले जा सकते। ये हमारी चार रानियां हैं। ऐसा नहीं सोचे अरे मैं तो माताजी हूं, मेरी चार रानी कैसे हो सकती है। नहीं नहीं, माताजियों के भी ये चार रानियां हैं, सबकी चार रानियां हैं। हमें चाहिए कि वो चौथी पहली रानी जो है, जिसका बिल्कुल हमने ध्यान नहीं दिया था, अभी उसकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, धननी भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी ग्रह द्वारे सखा स्मशाने देहोशितायां धर्मगो गच्छति जीव एकः। यही अर्थ है जो इस कहानी में बताया हुआ है। धननी भूमौ, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जो हमने कमाया हुआ धन रहता है, वो जहां हमने सुरक्षित रखा था उस धन को, वो वहीं का वहीं रह जाता है। समझ लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके 10 करोड़ रुपए रखे हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा, स्टेट बैंक में ही रह जाएगा, लेकिन हम चले जाएंगे, धन वहीं का वहीं रह जाएगा। या किसी ने अपने घर के नीचे खड्डा खोद के उसमें भर दिया हो सब, किसी को बताया नहीं, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, हम चले जाएंगे, धन रह जाएगा। जब हम बम्बई में गए थे, हम कई ऐसे लोगों से मिले, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों की कहानियां सुनने में आई। एक आदमी के बारे में, बहुत 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 बड़ा उद्योगपति है आजकल वो, प्राय कहा जाता है ऐसे कि जितना ज्यादा पैसा इस आदमी के पास है, इस उद्योगपति के पास, शायद सारे भारत में किसी के पास नहीं होगा। तो इस आदमी के पास पैसा आया कैसे, इतने बड़े तो उसके पास फैक्ट्री वगैरह है नहीं। तो मैंने एक आदमी से पूछा जो हमसे बात कर रहा था, इतना पैसा आया कहां से इसके पास। तो बोलने लगा, ये जो मंत्री के साथ, मंत्रियों के साथ, फिर ये जो सरकारी ऑफिसर है इनके साथ उठता बैठता काफी है, और इनका जो भी सारा 2 नंबर का कमाई है वो तो घर में नहीं रख सकते। अगर भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति वालों ने डाका डाल दिया तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वो सब उसके पास रखते थे, वो अच्छा उनको ब्याज देता था। तो ऐसे उसके पास करोड़ों करोड़ों अनगिनत करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं उसके पास। और अचानक जब वो मंत्री मर जाए, या वो सरकारी ऑफिसर, जिसने भी उद्योगपति हो, जो भी, इसने भी उसके पास पैसा रखा, वो आदमी मर जाए, पैसा वही उसके पास आएगा, और उसके रिश्तेदार उसके पास नहीं आ सकते पूछने के लिए। और रिश्तेदारों की बात तो दूर है, जीते जी कभी सरकारी ऑफिसर उनके पास गया, मेरा पैसा लौटा दीजिए, वो पूछते हैं रिसीट कहाँ है, तो गया। ऐसे उनके पास करोड़ों 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 रुपए हैं, तो इन्होंने सुरक्षा के लिए उसके पास रखा है, मजा वो कर रहा है। ये लोग फिर मर गए और इनके रिश्तेदारों को भी पैसा नहीं। दूसरी ओर हम एक ऐसे भी व्यक्ति को जानते थे जिनका देहांत हो गया, लेकिन वो बताते थे कि उनके पास कई सरकारी ऑफिसर जो है उनका 2 नंबर का पैसा रखते थे, और उनके पास बहुत कुछ पड़ा हुआ इधर उधर उन्होंने डाल के रखा है, और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अब मुझे पता नहीं वो पैसे का क्या हो गया। अब ये जिन्होंने इतना पैसा इनके पास रखा था, वो तो बेचारे बहुत नर्वस हो गए थे कि क्या होगा क्या होगा। और एक बात हमने सुनी कि एक बहुत बड़े उद्योगपति, भारत के बहुत बड़े उद्योगपति, वो जब हॉस्पिटल में थे, मृत्यु के शैया पे लेटे हुए थे, तो उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल में बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री लोग आए। तो एक व्यक्ति हमको बता रहे थे, एक भक्त भी वहां गए थे, तो हमको बता रहे थे ये मंत्री आने का कारण क्या है मालूम है, मंत्री लोग आने का कारण ये नहीं है कि वो देखना चाहते थे कि भाई ये आदमी कैसा है, ठीक है कि नहीं है। उन्होंने अपने 2 नंबर की कमाई उनके पास रखी थी, हमारे पैसे का क्या होगा, इसलिए यहां पर आए थे। तो इस तरह से हम व्यक्ति संसार में अपने धन की सुरक्षा के लिए कहां 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 रखता है, कभी जमीन के नीचे, कभी अलमारी के अंदर, कभी बिस्तर के नीचे, कभी बैंक के अंदर, कभी ऐसे दूसरे व्यक्ति के पास रखता है, जगह 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 उसको छुपा के रखता है, ताकि किसी को नहीं मिले, इतना सुरक्षित रखता है कि जब उसके जाने का समय होता है वो भी साथ में नहीं ले जा सकता। धनी भूमौ, धन जहां है वहीं पर रहेगा, हम चले जाएंगे। पशवो ही गोष्ठे, पशवो जैसे हमारे गाय हैं, बैल हैं, पुराने जमाने में वैदिक काल में आप जानते हैं गवयो धनवान, जिसके पास बहुत सारे गाय बैल थे वो धनवान माना जाता था। धान्य धनवान, धनवान जिसके पास बहुत धान्य है वो अमीर माना जाता था। तो पुराने जमाने में पशु 10,000, 20,000, 10,000 जैसे बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उनके पास लाखों लाखों गाय हुआ करते थे। नंद महाराज के पास 9,00,000 गाय। तो जब आदमी का देहांत हो जाता है, पशु भी अपने गोष्ठ में, अपने गोठे में या अपने गौशाला में रह जाते हैं, हम चले जाते हैं, पशु वहीं कहीं रह जाते हैं। ठीक उसी तरह से नारी गृह द्वारे, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी जो है ज्यादा से ज्यादा गृह द्वार, घर के द्वार तक आ सकती है। भारत में कई समाजों में महिलाएं जो हैं वो स्मशान तक जाती हैं, खास करके क्षत्रिय समाजों में। जैसे महाभागवत में वर्णन है कि पांडवों के मृत्यु के, पांडव सेना के मृत्यु के बाद, पांडव तो थे लेकिन उनको जो सैनिक थे उनके मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां जो है वो भी स्मशान तक चली। तो क्षत्रिय समाजों में महिलाएं भी जाती हैं, लेकिन अन्य समाजों में महिलाएं घर के द्वार तक ही रहती हैं, वो स्मशान में नहीं जाते। तो इसलिए यहां इसी बात की पुष्टि की गई है, नारी गृह द्वारे, जो पत्नी है उस व्यक्ति की जिसका देहांत हो गया वो केवल घर के द्वार तक उसका साथ दे सकती है, उसके आगे वो नहीं जाएगी। तो जिसने हमारा साथ 30 साल 40 साल तक दिया है, वो उस व्यक्ति के साथ जब वो हमसे दूर चला जाता है तो केवल हम दरवाजे, घर के दरवाजे तक ही हम जा सकते हैं। फिर रहे हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, सखा स्मशाने, सखा जो हमारे मित्र हैं वो केवल स्मशान तक हमारे साथ में आ सकते हैं, उसके पास, उसके बाद आगे वो क्या करेंगे। देहोश्चितायाम, हमारा देह वो कहां तक हमारे साथ में आएगा, अग्नि लगाने तक। अग्नि लगाने का जो स्थान है केवल वहां तक देह हमारे साथ में रहेगा, फिर उसके बाद हम और देह अलग हो जाएंगे। और अंत में धर्मो गो गच्छति जीव एकः, केवल धर्म ही एक चीज है जो कि हमेशा हमारे साथ में रहेगा, हमारे पास में आएगा। इस प्रकार से धर्म या भक्ति यही एक हमारा अनमोल धन है, यही एक हमारा सबसे बड़ा सबसे अच्छा प्रेमी मित्र है, यही हमारी रक्षा कर सकता है, यही हमारा साथ देगा। और भक्ति करते करते हमें जानना चाहिए कि ये एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा, जिसके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भी जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे होते हैं, दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी अपना प्रवचन शुरू करते हैं परीक्षित महाराज के लिए, परीक्षित महाराज उन व्यक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं जो कि भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं, तो उनके बारे में परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसंयेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति। वो कहते हैं देह अपत्य, देह मतलब हमारा देह, अपत्य मतलब हमारे बच्चे, कलत्र मतलब पत्नी, आदिशो मतलब हमारे सगे संबंधी, और कौन, साथ साथ में आत्मसंयेषु असत्सु अपि, हमारा देह, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, आत्मसैन्य ये हमारे सैनिक हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जिनके ऊपर हम निर्भर हैं। लेकिन वो कैसे सैनिक हैं, असत्सु मतलब जो हमें किसी भी क्षण धोखा दे सकते हैं। जैसे विचार कीजिए कि एक सेनापति है, उसके पास कई सैनिक हैं, सैन्य, और वो सब बोलते हैं हम आपके साथ, सेनापति महाराज हम आपके साथ रहेंगे, अंत तक आपके साथ हम रहेंगे, आप चलिए शत्रु के सामने, हम युद्ध करेंगे आपके साथ साथ। तो सेनापति का हौसला बढ़ जाता है, ठीक है सारे सैनिक हमारे साथ में हैं, चलो आगे चलता है। जब शत्रु सामने आता है और तीर चलने लगते हैं, ये सारे सैनिक भाग जाते हैं और अकेला सेनापति रह जाता है, उसकी क्या दशा होगी? ठीक ऐसे ही हमारी सब की दशा है, आत्मा की दशा। आत्मा ने अपने देह को, अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, इनको उनको अपना सैनिक बना लिया है, सोचता है कि ये मेरी रक्षा करेंगे, ये मेरा साथ देंगे। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो कौन साथ दे सकता है? सब हाथ ऊपर करते हैं, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, सबको अपने अपने रास्ते जाना पड़ता है। गजेंद्र इतना बड़ा हाथी, शक्तिशाली हाथियों का राजा, और जब वो पानी में मगरमच्छ के साथ युद्ध कर रहा था 1000 वर्ष, उसके कितने सारे सगे संबंधी सब नदी के तट पे खड़े थे और वो देख रहा था कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन कोई सामने नहीं आ पाया। इतने बड़े बड़े हाथी वहां होने के बाद भी उसको युद्ध अकेला लड़ना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से हमें भी युद्ध अकेला ही लड़ना पड़ेगा। और युद्ध कब जीत गया गजेंद्र? पहले तो हार रहा था, कब जीत गया? जब उसने भगवान की प्रार्थना की, भगवान का स्मरण किया, और फिर जब भगवान आए उस प्रार्थना के फलस्वरूप, तो उन्होंने उस सरोवर में से एक कमल पुष्प अपने सूट में उठाकर भगवान के चरण कमलों में अर्पण किया। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गर्दन काट दिया और गजेंद्र को बचा दिया। तो उसी प्रकार से हम भी हमारे सगे संबंधी इत्यादि के ऊपर निर्भर रहेंगे कि ये हमें बचाएंगे, लेकिन नहीं बचा पाएंगे। हम अपने आप को केवल उस समय बचा पाएंगे जबकि हम श्री कृष्ण के शरण लेंगे। उसी प्रकार से द्रौपदी के एक पति नहीं 5 पति थे, और पति कैसे पति? शक्तिशाली पति जैसे भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, देखिए पति के लिए इसे और क्या बुरा हो सकता है, और ऐसे 5 पति थे, लेकिन कोई भी इसमें से कुछ नहीं कर पाया। द्रौपदी ने एक के बाद एक सबकी ओर देखा कि कोई तो मेरी रक्षा करे, कोई नहीं कर पाया। जो बुजुर्ग थे वहां पर, भीष्म थे, द्रोण थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर जब द्रौपदी देवी ने श्री कृष्ण का आश्रय लिया, उस समय केवल वो बच पाई। इसका मतलब है कि ये संसार के जितने भी हमारे संबंध हैं, ये सब असत हैं, क्योंकि ये हमें संसार के संबंधों से प्रमत्त निधनम हमारे अंत को हम नहीं देखते, देखते हुए भी नहीं देखते। निधनम मतलब मृत्यु, पश्यन मतलब देखना, निधनम पश्यन अपि न पश्यति। हमारी तीव्र आसक्ति की वजह से जो इतना स्पष्ट है, उस चीज को देखते हुए भी हम नहीं देख पा रहे कि हमारी मृत्यु आने वाली है। हमें अभी श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए। ये जो भी हमारे पास में है, हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारा धन भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे, उनके एक मित्र थे, जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने डॉक्टर से कहा, मैं आपको इतना धन दूंगा, आप मुझे 2 साल ज्यादा बढ़ा के दीजिए। डॉक्टर ने कहा, जितना भी धन दीजिए, मैं एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकता। जितना आपके कपाल में लिखा है, वो भगवान ने जो रचा है, उतना ही होगा। तो हमारे सगे संबंधी, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा धन कोई काम का नहीं। केवल हमारी भक्ति, हमारा धर्म उस समय हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ में आएगा। इसलिए ये श्लोक बताने के बाद फिर सुखदेव गोस्वामी ने इसका निष्कर्ष बताया परीक्षित महाराज को। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। कि इसलिए हे राजन, तुम्हें भगवान श्री हरि, जो कि भक्तों के स्वामी हैं, भक्तों के पति है, पिता है, उनके स्मरण में, कीर्तन में और श्रवण में अपना समय बिताना चाहिए, जिससे कि अंत में तुम भय से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। और उसके बाद अगले श्लोक में उन्होंने बताया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर है पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। उन्होंने कहा कि चाहे कोई व्यक्ति सांख्य योग में बड़ा निपुण हो, एतावान सांख्य योगाभ्याम, या बड़ा अष्टांग योगी हो स्वधर्म परिनिष्ठया, या उसने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने सारे कर्तव्यों का पालन बड़े कट्टरता से किया हो, लेकिन ये उसके जीवन की सफलता नहीं है। तो जीवन की सफलता क्या है? जन्म लाभ परह, परह लाभ क्या है उसके जन्म का? अंते नारायण स्मृति ही। जब वो भगवान श्री नारायण या श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएगा उस समय, तो मृत्यु के समय केवल भगवान का नाम, भगवान की स्मृति हमें बचा सकती है। इसलिए जीवन भर अगर हम भगवान के स्मरण का अभ्यास करेंगे तो जीवन के अंत में उस समय हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, अन्यथा ये निसंभव नहीं है। इस तरह से हमारे लिए ये भक्ति का पथ बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे एकमात्र रक्षक है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। सब हमको त्याग देंगे, ऐन वक्त पर हाथ खड़ा कर देंगे सब लोग, केवल धर्म हमारा साथ रहेगा उस राजा की पहले पत्नी की तरह। हालांकि राजा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने राजा को कभी भूला नहीं। उसी प्रकार से हम धर्म को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन धर्म हमको नहीं भूलता। अगर हमने थोड़ा भी कुछ भक्ति की हो तो वो भक्ति हमारे लाभ के लिए आ जाएगी, मदद के लिए आ जाएगी, हमारे न जानते हुए भी। ये है भगवान का कृपालु स्वभाव। थोड़ा भी कुछ हम भगवान के लिए करेंगे, भगवान उसको बहुत महान समझते हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं, कभी भूलते नहीं है। इसलिए भगवान और भक्तों का स्वभाव ऐसा होता है। बाहरी दुनिया में हम देखते हैं कितने लोग निराश हो जाते हैं, अरे हमने इस व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ किया और देखो उसने हमने क्या बर्ताव किया हमारे साथ, पीठ में छुरी मार दी। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता, भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान के प्रति इतना भी कुछ हमने किया, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, बिल्कुल थोड़ा सा भी हमने कुछ किया, भगवान भूलते नहीं। तो फिर ऐसे आभारी, ऐसे कृपालु भगवान का शरण छोड़कर इस संसार के झूठे सैनिकों का शरण लेने का क्या फायदा? केवल यूनिफॉर्म पहन के, वर्दी पहन के, सलाम मार के हमारे साथ में रहते हैं, चिंता नहीं करो हम आपके साथ में हैं, लेकिन समय आने पर कोई नहीं आता साथ में, आ नहीं सकता, वो आना चाहते भी है तो नहीं आ सकते। तो इसलिए सेवा, यही सेवा हमको बचाएगी। प्रेम से जितना हम भगवान की सेवा करेंगे, उतने ही प्रेम से भगवान हमारे सामने आएंगे। इसमें कोई दिखावे का प्रश्न नहीं है। हम भक्ति इसलिए नहीं करते ताकि भक्ति के फल सबको दिखाई पड़े, जैसे धन संपत्ति के साथ होता है। लोग धन संपत्ति कमाते दूसरों को दिखाने के लिए, हमें भक्ति इस उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए। देखो भक्ति करने के बाद हमारी प्रतिष्ठा बढ़ गई, अभी लोग हमको प्रभु जी कहते हैं, हमको माता जी कहते हैं, पहले कोई पूछता नहीं था हमको, लोग नाम से पुकारते थे, आजकल प्रभु जी माता जी हो गए हम। और इतना ही नहीं, कई जगह जाते हैं तो हमारे पैर भी छूते हैं, आजकल हाथ भी जोड़ते हैं, सामने सर झुकाते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, हमको देखकर भगवान को याद करते हैं। इस तरह से हम भी बहुत कुछ भक्ति के फल दिखा सकते हैं लोगों को, देखो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, भक्ति करने के पास देखो हमारे जीवन में कितना धन आ गया, कितना ये आ गया, वो आ गया, या देखो हमने कितने लोगों को भक्त बनाया। लेकिन भक्ति में, ये सेवा में, फल या फल दिखाने की बात बिल्कुल नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, भगवान हृदय को देखते हैं। इसलिए भक्ति में फल का कोई विचार नहीं, प्रेममयी प्रयास का विचार है। इसलिए हमें भी हमारी सेवा में बिल्कुल ईमानदार रहना चाहिए। अगर हमने कोई गलती की है, गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर कोई अच्छी बात हमने की है तो उसका श्रेय भगवान को और भक्तों को देना चाहिए। इस प्रकार से हमारे प्रयास के फल से निरासक्त होना चाहिए। फल आए या न आए, हमारी सफलता है हमारी भावना में, हमारे प्रयास में। अगर हमने प्रेममयी सेवा की है तो हमारा प्रयास सफल है, चाहे भौतिक दृष्टि से वो सफल हुआ हो या नहीं। हम जाके पुस्तक वितरण कर रहे हैं, चाहे 20 बड़े बड़े किताब महाबिग बुक बिक जाए या कभी एक भी नहीं बके बिटे बढ़ जाए, लेकिन प्रयास हमारा उतना ही रहा, तो दोनों दिन में हमारी सफलता उतनी ही रही। इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति में भक्त को चाहिए बड़ा ईमानदार रहे, उससे उसको भगवान के धाम का राज्य, भगवान का राज्य की प्राप्ति हो सकती है। एक बार एक राजा था, राजा की कहानी आगे फिर से, तो उसके कोई संतान नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे, तो सोच रहा था मेरी इतनी रानियां हैं और यह भी बच्चा नहीं है, तो आगे ये राज चलाएगा कौन, राजकुमार कौन बनेगा। तो उसने सोचा ठीक है, इसके लिए एक ही उपाय है कि जितने भी राज्य के नवयुवक हैं उनको यहां बुलाएंगे। तो सारे नवयुवकों को बुलाया उन्होंने राज्य में, सारे नवयुवक हाजिर हो गए और उन्होंने घोषणा की कि देखो अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं और ज्यादा समय मेरे लिए नहीं रहा, मेरे वंश में कोई नहीं है, तो मुझे चिंता है कि मेरे बाद राज्य कौन संभालेगा, तो आप सबको मैंने यहां इसलिए बुलाया है। अभी आप सबको मैं ये थोड़े बहुत बीज दे रहा हूं, सबको उन्होंने बीज बांट दिए हाथ में, थोड़े 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 से सबको, जितने भी सारे युवक आए थे, और उनसे कहा कि जाओ अपने अपने घर में इनको इस मटके में डालो और इस मटके में मिट्टी है, वो भी उन्होंने साथ में दिया, बीज भी दिए, मटका भी दिया, मिट्टी भी दिया सबको, और कहा कि जाओ इसको बीज को बो डालो, अच्छी तरह से पानी डालो और 6 महीने के बाद यहां पर मेरे पास ठीक आना, और जिसका पौधा सबसे बढ़िया होगा उसको राजा बनाया जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सारे नवयुवक अपने अपने घर में चले गए, सब बीज को लेकर और मिट्टी और मटके को लेकर, सब ने बड़े उत्साह से पानी रोज उठकर पानी डालते थे, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं देखते थे, और स्वप्न देख रहे थे कि मैं आज थोड़े 6 महीने में राजा बनूंगा, देखो मेरा पौधा कितना अच्छा हो रहा है। सब लोग अपने अपने दुनिया में थे, स्वप्न देख रहे थे राजा बनने की। एक लड़का था बेचारा, जितना भी वो कोशिश करे वो बीज का कुछ फल आए नहीं, पौधा बने ही नहीं, और जैसे का जैसे मिट्टी में था वैसे मिट्टी में ही रहा। वो रोज बेचारा पानी देता रहा, उसको धूप में डालता रहा, कुछ भी करे कुछ होता ही नहीं। और जब वो दूसरे युवकों के पास जाता देखता कि अरे इसका पौधा इतना बड़ा हो गया, इसका इतना बड़ा हो गया, मैं अकेला हूं, बहुत निराश हो गया, घबराने भी लगा। 6 महीने बीत गए, सब लोग अपने अपने मटके लेकर आ गए साथ राजा के सामने, किसी का इतना बड़ा, किसी का इतना बड़ा, किसी का इतना बड़ा, हरे भरे सबके पौधे। और फिर राजा ने देखा कि एक बेचारा लड़का यहां खड़ा है, हाथ में उसका केवल मटका है, मिट्टी है और कुछ है नहीं। इधर आओ, कहां गया तुम्हारा पौधा, बताया था ना तुम नहीं जानते, आदेश का पालन नहीं करने से तुम्हें क्या मिलेगा। अरे हुजूर क्या करूं, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत पानी डाला, ये किया वो किया, लेकिन मेरा प्रयास असफल हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्या करूं। तो राजा बोलने लगा, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम राजा बनोगे। हाँ मैं राजा बनूंगा, क्यों, क्या किया मैंने। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, सब लोग सोच रहे थे कि वो राजा बनने वाले हैं, देखो मेरा पौधा सबसे अच्छा है और इसको कैसे हो गया ये। तो राजा ने उत्तर दिया कि देखो मैंने जो बीज आप सबको दिए थे उन सबको मैंने पानी में डालकर उबाल दिया था, उबले हुए बीज थे सब, इसलिए जब बीज को उबला दिया जाता है तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, फिर उसको आप मिट्टी में भी डालिए फिर वो उगेगा नहीं, कितना भी कुछ कीजिए, जैसे बीज को जलाने से उबलाने से ऐसे होता है। तो इसका मतलब है कि सारे जो नवयुवक थे इन्होंने क्या किया था, चीटिंग किया था ना, उन्होंने ट्राई किया होगा थोड़े, अरे आता नहीं आता नहीं आता नहीं, चलो चलो ये लो नया कुछ लगा लो और कर लो, किसको पता चलेगा, है ना। तो सबने ऐसा कर दिया, केवल एक लड़का ईमानदार था, ईमानदार था इसलिए उसको राजपद मिल गया। उसी प्रकार से हमें भी भगवान के धाम में राजपद जैसा एक स्थान इंतजार कर रहा है। भगवान अपने भक्तों को अपना सारा धाम ही देते थे, जैसे उन्होंने ध्रुव महाराज को क्या दिया, ध्रुव लोक दिया, जो कि पहले किसी को नहीं दिया हुआ था उन्होंने, और वो दिया और उनको राजा बनाया, अपने ही धाम का राजा बनाया अपने भक्त को। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में प्रार्थना करते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जब आपत्तियां विपत्तियां आती हैं तो मैं समझता हूं कि ये मेरे कृतम विपाकम, मेरे पूर्व किए हुए पापों का फल है, किसी को दोष नहीं देता हूं मैं, और केवल आपकी अनुकंपा या आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता हूं बस। और प्रतीक्षा करते करते मैं क्या करता हूं, हृदवाग वपुर भी विदधन नमस्ते, आपको नमस्कार करता हूं, आपकी सेवा करता हूं हृदय से, अपने वाणी से, अपने शरीर से, अपने कार्यों से। जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग, और जो व्यक्ति ऐसे करता है वो आपके धाम का प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। वैष्णव आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एक पुत्र को अपने पिता के जायदाद को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, केवल जीवित रहना चाहिए उसको और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। केवल जीवित रहेगा तो खुद ब खुद उसको पिता का जायदाद मिलेगा। हाँ, आजकल अलग है, लोग अलग करते हैं, शाहजहां के औरंगजेब के टाइम से या उसके पहले से भी कंस ने भी ऐसे किया ना, क्या किया, अपने पिता को ही राजगद्दी से उठाकर जेल में डाल दिया, खुद राज सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन कोई सज्जन लड़का हो तो क्या करेगा, केवल जीवित रहेगा, अपने पिता की सेवा करेगा और पिता की जायदाद मिल जाएगी। किसी राजकुमार को राजा बनना हो तो क्या करना चाहिए, जैसे प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। अगर केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा ईमानदारी से, प्रभु रामचंद्र ने अपने पिताजी के धर्म का ईमानदारी के रक्षण के लिए वो वन में गए। राम कथा के समय हम सुन रहे थे कि कैसे सब लोग, यहां तक कि दशरथ महाराज भी बोल रहे थे कि आप ठहर जाओ यहां पर, मुझे राजगद्दी से हटाओ और खुद बैठ जाओ, ये धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु रामचंद्र ने कहा, नहीं, मेरे पिताजी ने वचन दिया है और मैंने भी मेरे माता कैकेयी को वचन दिया है, तो मैं इस वचन को तोड़ नहीं सकता, मुझे ईमानदार रहना चाहिए, मुझे धर्मज्ञ रहना चाहिए। तो अपने ईमानदारी के संरक्षण के लिए, अपने पिता की ईमानदारी के संरक्षण के लिए वो वन में गए और आखिर में उनको राजपद तो मिल ही गया। तो अगर किसी राजकुमार को राजपद चाहिए, केवल अपने पिता राजा की सेवा करते रहना चाहिए ईमानदारी से, तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है, राजा है, और हम सब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, राजकुमार। लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर हमको भगवान का धाम मिलेगा, मतलब हम राजा, हम भगवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं, हम भगवान नहीं हो सकते, लेकिन भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम का जितना भी ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, सब कुछ हमको मिल जाएगा। इसको कहते हैं सारष्टि, भगवान के धाम का ऐश्वर्य मिलना, जितना ऐश्वर्य भगवान के पास है उतना ऐश्वर्य हमको मिल सकता है। तो उसी प्रकार से हमारी भक्ति में, हमारी सेवा में भी अगर हम ईमानदार रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, हमें याद रखना चाहिए कि दूसरे देखें या ना देखें, भगवान हमारी सेवा को हमेशा देखते हैं, और केवल बाहरी सेवा को नहीं, हमारे हृदय की क्या भावना है जिससे हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, उसको भी देख रहे हैं। तो अगर कोई भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा के समय कोई ऐसी सेवा कर रहा था या थी कि दूसरे भक्तों ने देखा भी नहीं, निराश होने की बात नहीं। कोई भक्त को ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं कोने में सेवा कर रहा था, कोई आया भी नहीं, वहां पे अकेला बैठा था मैं, दो रात को, दो शाम, दो रात, बाकी जगह सब लोग आए गए, सबने देखा कि कितना अच्छा सेवा कर रहा है ये भक्त, लेकिन मुझे किसी ने देखा भी नहीं, किसी को पता भी हुआ कि मालूम नहीं कि मैं सेवा कर रहा था, लेकिन वाह 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 सब दूसरों को मिल गया। नहीं, ऐसे निराश होने की आवश्यकता नहीं, भले कोई देखे या न देखे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अवश्य देखते हैं और इसका फल भी अवश्य हमको मिलेगा। प्रेम का जवाब भगवान प्रेम से ही देते हैं। जब हम प्रेम से आदान प्रदान करने का इच्छा करते हैं, भगवान सामने रखते हैं। हम एक कदम सामने रखेंगे, भगवान 10 कदम सामने रखेंगे, और हमारे एक कदम तो बहुत छोटा है, भगवान का एक कदम वामन देव जैसे इतना विशाल। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे मेरे सामने आता है वैसे ही मैं प्रतिकार करता हूं। तो अगर हमने इस तरह से भगवान की सेवा के लिए बड़े शुद्धता से, बड़े भक्ति भाव से किया, ईमानदारी से सेवा किया, दूसरों से प्रशंसा न पाने की इच्छा रखी, तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, हमारे हृदय को शीघ्र ही शुद्ध करेंगे और हम भक्ति में प्रगति बहुत तेजी से करेंगे। और जब इस देह को त्यागने का समय आएगा तो हम पहली पत्नी को याद करते हुए हम साथ में उसको ले जाएंगे। इसलिए आप सबने रथ यात्रा के लिए इतना सब सेवा किया है, अब निश्चित रूप से याद रखिए कि आपकी पहली पत्नी बहुत हृष्ट पुष्ट है, वो राजा की तरह एकदम दुबली पतली नहीं है, वो आपके साथ में रहेगी। तो आप सबकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी आपका अनुभव होगा कि जब हम सेवा करते हैं, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो उस सेवा में, लेकिन जो आनंद हमको उस सेवा में मिलेगा वो बाहर की दुनिया के आराम में भी नहीं मिलेगा। ये अनुभव है आप सबका। अलग अलग विभाग में सेवा में कितना कष्ट लिया, भारी भारी बर्तन उठा ले जाना, वो धूप में इसमें उसमें वो बर्तन वो रसोई करना, और कितने सारे हर विभाग में ऐसे कोई ना कोई कार्य था। लेकिन फिर भी अब जब आप सोचेंगे को कितने अच्छे दिन थे रथ यात्रा के समय, कितना आनंद आया था। आप सबको रात याद है जब एक रात में मिलिट्री महादेव मंदिर से हमारा पंडाल उठा लिया गया था और एक रात में यहाँ मंदिर के सामने मैदान में खड़ा कर दिया गया था। आप में से कितने भक्तों को याद है ना, क्योंकि एक रात में हम सबको सोचा था कि अरे एक रात में सारा जगन्नाथ रथ यात्रा का पंडाल दूसरे जगह में डालना है, कैसे डालेंगे। लेकिन भक्तों ने क्या किया, पूरी रात मेहनत करके अगले दिन सुबह को जब लोग आए शाम को, अरे ये क्या हो गया, एक रात में इतना सब चमत्कार, ये है सेवा का कमाल। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। लिंकन आपने नाम सुना है उनका। कभी कभी क्या है, ये भौतिकवादी लोग भी रहते हैं, फिर भी उनकी कहावत कभी कभी एक आध बार अच्छी रहती है बहुत। उन्होंने एक ऐसे वाक्य कहा था कि हम साथ मिलकर जो चमत्कार कर सकते हैं उसकी सीमा नहीं है, अगर केवल ये महत्वपूर्ण न हो कि श्रेय किसको जाए। समझ में आया आपको। आप में से बोले ये वाक्य बहुत हमको पसंद आया, ये हमारे लिए सार है, हमारे आंदोलन के लिए भी यही सार है। आप में से और कोई ये दोहराइए इस बात को, 4 भक्त 5 भक्त इस बात को दोहराइए अपनी अपनी भाषा में, इसी बात को बोलिए। कौन बोलेंगे जिन्होंने, हाँ बोलिए। व्हाट इज मोर देन दैट, द पॉइंट इज there is no limit to the wonderful things that can be done if it doesn't matter who gets the credit. इसी बात को हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ी में, सब कन्नड़ में बोलिए आप सब। हिंदी में कौन बोलेंगे बोलिए। हाँ करेंगे। वो चमत्कार से चमत्कार हो सकता है अगर हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि श्रेय किसको जाए। समझ में आया। और बोली ज्यावेळी आम्ही विचार करणार की श्रेय महत्वाचं नाही आहे त्यावेळी ते चमत्काराचं कार्य होणार आहे. जब हम लोग विचार करेंगे कि किसको श्रेय जाता है इसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है तब हमारा साथ में मिलकर जो कार्य होगा वो चमत्कार हो जाएगा. नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे में धक्का मुक्के, ए मेरे को चाहिए, ए तुम उसके लिए श्रेय क्यों लेते हो, मैंने किया मेरी वजह से ये हुआ सफल तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तो झगड़ा हो जाएगा. अहंकार घमंड. भक्तों में संस्कृति क्या है, दूसरे को श्रेय देना और दोष अपने पे ले लेना. भौतिक जगत में क्या है, दोष दूसरे के ऊपर फेंक देना और श्रेय अपने आप लेना. अभी राजनीति में ऐसे चल रहा है ना, चुनाव के समय में आप देखते हैं ना अखबारों में, हर पार्टी बोल रही है भारत में जितना भी अच्छा हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, जो भी बुरा हुआ वो दूसरों की वजह से हुआ, दूसरे पार्टी की वजह से हुआ है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना सर, इसलिए भारत की यह दशा है आज. लेकिन साथ मिलकर सब काम करेंगे और श्रेय के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे तो फिर जो हासिल हो पाएगा साथ में मिलकर इस भावना से, उस चमत्कार की कोई सीमा नहीं. और बोलिए, और कौन कौन बोलेंगे, और बताइए, और कौन बोलेंगे इसी बात को. और दो तीन बात बोलिए, ये इतना महत्वपूर्ण है हम ये रात तक भी यही बोलते रहे तो चलेगा कि श्रेय कोणाला जाणार आहे आणि आम्ही एकत्र मिळून जर काम केलं तर जे चमत्काराचं काम होणार त्याची काही सीमा नाही आहे. और कोई बोले, माताजी मुझे कोई नहीं बोला किसी ने, बहुत अच्छा. तो इसका मतलब क्या है, इसका सार क्या है, दो चीजें हैं इसके, एक है श्रेय की कामना नहीं करना. श्रेय किसका है, गुरु वैष्णव कृष्ण उनका है श्रेय, हमारा नहीं. दूसरी बात क्या है, साथ में मिलकर काम करना. कैसे मिलकर काम करना, बड़े सहकार्य की भावना से, नम्रता पूर्वक प्रेम की भावना से. तो ये दोनों का साथ होगा तो फिर संतान क्या है, चमत्कार. कैसा चमत्कार, सीमा से भी बाहर. देखो अगर भौतिक लोग भी ऐसा सोच सकते हैं तो भक्तों को और कितना ज्यादा सोचना चाहिए इसके बारे में. सब भौतिक लोग बुद्धू हैं ऐसा नहीं है, बुद्धिमान भी लोग हैं, उन्होंने भी बहुत सोचा है इस सृष्टि के बारे में, सोच समझ के उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले. एक 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 रत्न है ये भी. गड़बड़ कहां आ जाती है, हम राजनीति में देखते हैं बिल्कुल. अगर आपको क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, तो आजकल के चुनाव के खबरें पढ़ो आप. कौन एक दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हथौड़ी मार रहे हैं. अच्छा चीज हमने किया, बुरा चीज उसने किया, है ना. तो भक्तों के जीवन में, भक्तों के समाज में क्या भावना होनी चाहिए कि श्रेय दूसरों का है, मेरा नहीं है. और ऐसे भावना से अगर हम करेंगे तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा में जो कमाल हुआ वो इसी का एक प्रमाण है, सबूत है. इस सिद्धांत का सबूत आप सबने करके दिखाया, क्योंकि आप में से किसी ने श्रेय की अभिलाषा नहीं की कि मेरा नाम आगे आ जाए, कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मेरी वजह से ये सफल हुआ मेरी वजह से ये हुआ, क्योंकि आप में से किसी ने ऐसे विचार नहीं किया, इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा इतना सफल हो गया. ये है सार, राज, रहस्य. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. तो आप में से कोई प्रश्न है किसी को, या कोई टीका. प्रश्न ये है कि कलयुग में बारिश, अभी की बारिश की कमी है, हालांकि कृष्ण भक्त इतने सारे हैं, तो लोग पूछते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए. इतने सारे नहीं है, बहुत कम है. कितने हैं अभी भारत की जनसंख्या क्या है, क्या है भारत की जनसंख्या, एक कितने 100 करोड़, एक अरब, अरब अरब बोलते हैं ना उसको, एक अरब, 100 करोड़. 100 करोड़ में से कितने ऐसे कृष्ण भक्त हैं जो ऐसे नियम का पालन करते हैं, जो कृष्ण के नाम का नियमित रूप से उच्चारण करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं भक्ति भाव से, कितने हैं? बेलगाम में देखिए कितने हैं, बहुत कम है संख्या में। तो जो भी कुछ थोड़ा भी कुछ हो रहा है वो भी इतने थोड़े भक्तों की वजह से हो रहा है। अगर इतने छोटे सारे भक्त भी नहीं होते तो क्या होता पता नहीं। अभी कलयुग में लोग ऐसा करते हैं, उनकी दृष्टि बहुत स्थूल हो गई है, जो आंखों के सामने दिखता है वही सत्य है। आंखों की दृष्टि के पीछे उसके परे कुछ और हो सकता है, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते, विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप उनको कहेंगे वर्षा की बात, वर्षा यज्ञ से होता है, विश्वास नहीं करेंगे। वो कुछ वैज्ञानिक कारण बताएंगे, बादल में ऐसे होता है, उसे ऐसे होता है, इसलिए वर्षा होती है। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करते कि जब तक यज्ञ नहीं होगा वर्षा नहीं होगी। तो यज्ञ कलयुग का क्या है? संकीर्तन यज्ञ। तो ज्यादा से ज्यादा हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो वर्षा आ जाएगी। और कोई प्रश्न? टीका यह है कि शुरुआत में कभी कभी भक्त बड़े निस्वार्थ भावना से सेवा करता है भगवान की कई साल तक, फिर बाद में देखा जाता है कि शायद वो कोई स्वार्थ से कर रहा हो, तो भगवान उसको बचाते क्यों नहीं है? उसको उसमें उसकी भावना बिल्कुल निस्वार्थ क्यों नहीं बनाते? पानी कहां से आ रहा है? पानी आ रहा है। आपने पानी बरसात की बात की, देखो आ गया, देखो आपकी शुद्धता कितनी है। बोला कि तो अच्छा, एक विद्यार्थी है, पहले से दसवीं में उसको जाना है, पहली से चौथी में है, बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई करता है, लेकिन जब छठे सातवीं में पहुंच जाता है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। बड़ा होने के बाद सोचता है चलो अभी थोड़ा क्लास को बंक मार के सिनेमा जाते हैं, सोचता है अभी बड़ा हो गया ना थोड़ा, सोचता है मैं स्वतंत्र हूं, अब इतना नजर कोई नहीं रख रहा मेरे ऊपर, चले जाता है। फिर बाद में क्या होगा? अगर उसके बुरे नंबर आएंगे तो उसमें क्या उसके अध्यापकों का दोष है? नहीं। उसी प्रकार से जब हम पहले पहले भक्ति में आते हैं नौसुखी अवस्था में, हमको आने पहले आने का भक्ति में आने का उत्साह रहता है, बहुत सिंसियर रहते हैं, अब वरिष्ठ भक्तों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो वो कहते हैं हम बोलते हैं, हम करते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीत जाता है, हम सोचते अरे हम भी तो वरिष्ठ भक्त हैं, अभी आखिर हम भी तो स्वतंत्र कर सकते हैं कुछ, और फिर ऐसा करने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, फिर हमारे अंदर वो अनर्थ बढ़ने लगते हैं। तो जो पुराने हमारे स्वार्थ है पूरी तरह से उनका दमन नहीं हो गया, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे, हालांकि नष्ट होने के पथ में चल रहे हैं हम उन चीजों को, लेकिन पूरी तरह से अभी शुद्ध हुए नहीं हम। लेकिन तब तक कोई लापरवाही की वजह से वो धीरे धीरे वो अनर्थ फिर से बढ़ने लगते हैं। इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कारण क्या है? कारण है हमारी लापरवाही। इसलिए भक्त को चाहिए कि हमेशा वो सतर्क रहना चाहिए, भक्त को केयरफुल, कभी भी लापरवाही नेग्लिजेंट नहीं करना चाहिए, अपने माला के बारे में, अपने अध्ययन के बारे में, अपनी साधना के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, असत्संग को त्याग करना, भक्तों का संग करना, छोटी छोटी चीजें भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर कर सकती हैं। एक क्षण के लिए भी, जैसे अजामिल के साथ हुआ, हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए या कहीं जा रहे हैं, जाते जाते टीवी उनके घर में उनके कमरे में देखा, जाते जाते अरे एक सेकंड देखा, आकर्षित होकर बैठ गया उधर देखने के लिए, खत्म है ना। इसलिए अगर हम लापरवाही करेंगे, हम सतर्क नहीं रहेंगे कि नहीं अभी नहीं देखना है, मन को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है, चलो जाके देखें तो सही, उससे ना अगर हम कड़क नहीं रहे, अगर हम लापरवाही हमने किया तो फिर हमारा मन हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे अनर्थ और बढ़ जाएंगे हमारे मन में। इसलिए भक्त को चाहिए हर क्षण बहुत सावधान रहना चाहिए। और कोई प्रश्न? प्रश्न यह, आपने अच्छी चीजों के बारे में बताया, लेकिन ऐसी भी कई चीजें हुई होंगी जो नहीं होनी चाहिए थी, अगर आप ऐसी चीजें बताएं तो बहुत वह गलतियां आगे न हो, उसकी सावधानी हम रख सकते हैं?
हरे कृष्णा।
मुझे तो कोई गलती दिखाई नहीं रही, सबने एकदम अच्छा सेवा किया। तो अगर गलती है तो हमको अपना अपना गलती देखना चाहिए कि हमने क्या गलती की, वो हम सब बोल सकते हैं। लेकिन हमको तो कोई गलती दिखाई नहीं दी, सबने बहुत सुंदर ढंग से सेवा किया। लेकिन गलती नहीं करना ये परिपूर्णता नहीं है, परिपूर्णता का शिखर नहीं है। अच्छाई में भी और भी श्रेष्ठ, और भी अच्छा, और भी अच्छा, और भी अच्छा, और भी अच्छा, ये आध्यात्मिक है। परिपूर्ण और परिपूर्ण और परिपूर्ण, इसकी कोई सीमा नहीं आध्यात्मिक जगत में। इसलिए इस साल बहुत अच्छा हुआ, अगले साल और भी अच्छा, उसके बाद और भी अच्छा, अच्छा से अच्छा, बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना। और कोई बात, प्रश्न है कि हमको किसको धन्यवाद देना चाहिए? हमको अन्यों को देना चाहिए, हमसे हमारे से अलग जो है हमें दूसरों को देना चाहिए। हरेक व्यक्ति को अन्य वैष्णवों को देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमको सेवा करने की संधि मिल गई। है ना, सेवा मिलना ये बहुत अनमोल चीज है, भगवान की सेवा। अभी आजकल देखो सरकारी नौकरी के लिए क्या नहीं हो रहा है ना। सरकारी नौकरी अगर किसी को चाहिए, हमने तो सुना है कि बहुत लाखों रुपए ये करो वो करो, ऐसे कुछ हमने सुना है, बहुत होता है। अंदर की बात तो मालूम है, लेकिन इसे ऊपर ऊपर से हम सुनते हैं सर। तो सरकार का नौकर बनने के लिए, या समझो कि प्रधानमंत्री के घर में अगर किसी को नौकर बनना है तो क्या करना चाहिए? इसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये तो केवल एक सरकार है, एक प्रधानमंत्री है, उसके अलावा इसके छोड़कर हमको अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कृष्ण के सेवक बनने के लिए हमको चांस मिला है। कितना ऊंचा स्तर है ये, कितना अनमोल एक संधि है ये हमारे लिए। लेकिन लोग इस चीज को छोड़कर वो ये सर्विस के पीछे, ये कंपनी है, ये कम इधर उधर इधर, इसको ही बड़ा समझते हैं। अगर आप कोई अपना परिचय देना चाहते हैं, कोई बड़े कंपनी का नाम लेंगे, हम फलाना फलाना कंपनी के में सर्विस करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, आप इतने कंपनी में बड़े सर्विस करते हैं, आप इनके सेवक हैं, बहुत अच्छा। लेकिन आप बोलेंगे हम कृष्ण के सेवक हैं, अरे क्या कृष्ण के सेवक, कुछ ये क्या कोई बात है क्या, कुछ करो। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि सबसे ऊंचे व्यक्ति की सेवा छोड़कर किसी संसार के तीसरे श्रेणी के आदमी की तुम सेवा करो, वो ऐसा बोलना चाहते। देखो संसार में लोगों की बुद्धि कितनी उल्टी है, ऊंचे से ऊंचा सेवा करने का श्रेय देने के बजाय वो नीचे से नीचे वो सेवा करना चाहते हैं लोगों का। और कोई प्रश्न ये है कि अर्जुन ने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय वो वचनबद्ध थे। युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेल दिया था, और जुआ में उन्होंने अपने राज्य को, अपने धन को, और यहां तक कि अपनी पत्नी को भी जुए में डाल दिया था। इसलिए अब वो उनकी पत्नी उनकी नहीं रही, इसलिए उनका कोई अधिकार नहीं था करने के लिए, इसलिए वो नहीं कर पाए। हालांकि वो उनको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज उनके बड़े भाई ने वचन दे दिया था, और युधिष्ठिर महाराज के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया, और द्रौपदी देवी भी युधिष्ठिर महाराज के ऊपर गुस्सा हुई। तो आपको क्या अधिकार था, मेरे ऊपर आपका इस तरह से कैसे अधिकार हुआ कि आप मुझे आप दे सके? लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने दे दिया, इसलिए वो भी वचनबद्ध हो गए। कि हम सेवा स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कैसे समझना चाहिए, मुश्किल नहीं है, समझ पाएंगे, थोड़ा अंदर देखेंगे समझ पाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं। कभी कभी थोड़ा चश्मा लगाना पड़ता है अंदर देखने के लिए, अंदर देखने के चश्मा थोड़ा लगाएं, थोड़ी ईमानदारी से देखें, हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या गड़बड़ी है अंदर हृदय में। और कोई बात, अगर श्री रामचंद्र चाहते तो वाली को सामने से भी मार सकते, पीछे से क्यों मारा? ये तो बड़ा विषय है, लेकिन संक्षेप में एक कारण, अगर भगवान ऐसा नहीं करते, ऐसे सब कार्य नहीं करते तो आसानी से सभी लोग श्रद्धा रखते भगवान में, सभी लोग भक्ति करने लग जाते। लेकिन भगवान को ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ करना है जिससे कि जो अश्रद्धालु है उनको कोई संशय लेने का कोई कारण मिले, कोई पॉइंट मिले, जिससे कि वो भक्त नहीं बने। भगवान अपने भक्ति की सुरक्षा रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं भक्ति को, केवल श्रद्धावान लोगों को भक्ति में प्रवेश करने के लिए देते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, कार्य कर देते हैं, जिससे कि अचानक अश्रद्धालु लोगों को एक पॉइंट मिल जाता है, भगवान ऐसे क्यों किया, तो हम नहीं करेंगे भक्ति। भगवान बोला अच्छा चलो, हमारा ये भक्ति का धन है केवल श्रद्धालु लोगों के लिए, हर ऐरे गहरे के लिए नहीं है। तो भगवान ऐसे कभी कभी एक कर देते हैं कुछ, जैसे श्री कृष्ण भी ऐसे किया ना युद्ध भूमि में, तो कैसे कितने सारे काम ऐसे कर दिए है ना, द्रोणाचार्य को मारने के लिए अर्जुन को कह दिया, अर्जुन मारो द्रोणाचार्य को, हालांकि द्रोणाचार्य अभी बैठे हुए थे ध्यान मुद्रा में, क्षत्रिय को ये उचित नहीं है, लेकिन भौतिक दृष्टि से भी इन चीजों को देखा जा सकता है कि भगवान कर्म के फलों के फलों को प्रदान करने वाले हैं। वाली ने भी ऐसे पाप किए थे जिससे उनका ऐसे वध होना उचित था। वाली ने भी सुग्रीव के पत्नी का अपहरण किया था, सुग्रीव के वहां पर होते हुए सुग्रीव को बाहर निकाल दिया था, तो यह पाप है जिसके लिए उनकी मृत्यु थी। मृत्यु दंड देने वाले तो भगवान है, इसलिए उनको पूरा अधिकार था। केवल इतना ही है कि वो मनुष्य लीला कर रहे थे। उधर द्रोणाचार्य का वध ऐसे क्यों हुआ, कि हत्या क्यों हुई, द्रोणाचार्य ने इसी तरह से अधर्म से उन्होंने अभिमन्यु की हत्या कराई थी। वो 6 महारथी एक महारथी के साथ युद्ध कर रहे थे, हालांकि युद्ध का नियम है कि एक महारथी के साथ एक